राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गौरान्विताय श्री श्री गौरान्विताय गौरान्विताय श्री श्री गौरान्विताय हरिबोल 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 नित्य गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल
कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जन्माष्टमी महामहोत्सव की कृष्ण भगवान की ओम अज्ञान ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं समस्त जगतां कृष्णं विना का गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः। कृष्णात्रस्यति कालभीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो कृष्णत्वमेव आश्रयः। मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरे नमन करता हूँ, जिनके श्री चरणों में सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत आश्रित हैं। कृष्ण को छोड़कर और गंतव्य स्थान जीव के लिए क्या हो सकता है, और कृष्ण के नाम मात्र अपने जिह्वा में धारण करने से एक जीव सब तरह के अपने चित्त में बसा हुआ कलमश मल इत्यादि को मिटाकर परिशुद्ध हो सकता है एक जीव। और ऐसे अद्भुत कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप लीला चेष्टाएं इत्यादि का वर्णन जो भागवत में हुआ है, वो उन लीलाओं को श्रवण करके मैं भगवान के श्री चरणों में मैं हमेशा झुकूंगा। और हर एक इंसान के पीछे काल का सर्प पड़ा है, पीछे कर रहा है, डरा रहा है, लेकिन कृष्ण की स्मरण करके एक इंसान निडर होकर इस दुनिया में विचरण कर सकता है। और इस दुनिया के चंद्र सूर्य नक्षत्र आसमान भूमि समुद्र पहाड़ें और जनता देवताएं प्राणियां 84 लाख योनियों में जो भी हैं सब कृष्ण के वश में हैं। सर्वस्य कृष्णं वशेत कृष्णे भक्तिरखंडिता भवतु मे। हे कृष्ण, आपके लिए मेरे भक्ति अखंडित हो, नित्य निरंतर हो, सदा आपकी स्मृति में मेरे मन डूबे रहे। इस तरह प्रार्थना है। आप सबको स्वागत है आज के सत्र में, सायंकालीन सत्र में। कल हम मनाने जा रहे हैं गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी हमारे सब इस्कॉन मंदिरों में। मैं सर्वप्रथम श्रीमान ब्रजहरि प्रभु, श्रीमान भीम प्रभु, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु, श्रीमान मुकुंद माधव प्रभु, श्रीमान रामरूप प्रभु और भी अनेक उधर के वरिष्ठ भक्त श्रीमान कपिल प्रभु, ये सब लोग मेरे शिक्षा गुरु हैं। 1991 में मैं जुहू मंदिर में ही भक्ति में पहले जुड़ा। मैं इन लोगों को मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इनकी प्रेरणा से ही मेरी भक्ति चालू हुई और आज तक मैं जो भी कर रहा हूँ इनकी असीम कृपा है मेरे ऊपर, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबके साथ कुछ कृष्ण कथा बोलने के लिए मौका दिया है। ये कृष्ण जयंती जो हम लोग कल मनाने जा रहे हैं, इस साल एक खास अनुभव है हम लोगों का, क्योंकि हर साल हम मंदिर में आते थे दर्शन करना, भजन कीर्तन में भाग लेना, हजारों लाखों भक्तों के बीच में आकर विविध कार्यक्रमों में भाग लेना इत्यादि होता था पहले। यह पैंडेमिक कोरोना के कारण हम सब लोग अपने अपने घर में चार दीवारों के अंदर एक कारागार जैसे हम लोग बंधे गए हैं। मैंने एक कार्टून देखा जिसमें सब प्राणियां जैसे बाघ, शेर, हाथी इत्यादि जो जू में रहते हैं वो सब सड़क में चल रहे हैं, सड़क काली पड़ा है, और हम जैसे लोग सब लोग हम दीवार चार दीवारों के अंदर हैं, खिड़की से हम लोग मास्क पहन कर देख रहे हैं, हैं? और वो जानवर चलते हैं फिरते हैं, घर घर जाकर देखते हैं कौन कौन अंदर बैठा है, ऐसे देख रहे हैं वो। ऐसे ही कार्टून बनाया था उन्होंने। इस कार्टून का मतलब क्या बोल रहे हैं, अभी इंसान पैंडमिक के कारण अपने घर में लॉकडाउन हो गया है, पहले तो उन्होंने जानवरों को ला करके रखा था, उनको कैदी बनाया था, और उन जानवरों को ही खाकर अभी इसके कारण इंसान को वो ही जानवर लाख में लगा दिया, ऐसे दिखा रहे हैं वो। तो जो भी हो, इस साल जन्माष्टमी आप लोग अपने अपने घर में मना रहे हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी देवकी वसुदेव के साथ लॉकडाउन में हैं, वो भी कल कल जब भगवान अवतरित होंगे वो भी उनके माता पिता भी लॉकडाउन के सिचुएशन में है, उसी परिस्थिति में है वो भी, क्योंकि काम सने उनके कारागार में रखा था उनको। लेकिन अद्भुत बात क्या है उनके जीवन में, कारागार में अंदर होकर वो ऊब नहीं गए, हताश नहीं हुए, आपस में झगड़ा नहीं किया, और उनका मन विचलित नहीं हुआ, एकदम शांति से धैर्य ना खो बैठकर भगवान की राह देख रहे थे। उनका कि माता के छह बच्चों को एक एक करके मारा है, कम से हम लोग जानते हैं, फिर भी माँ राह देख रही थी कृष्ण के आगमन कब होगा, शुभ आगमन होगा जन्माष्टमी के दिन, वो राह देख रही है आज भी, तो कल भगवान अवतरित होंगे वो कारागार में। इससे क्या हम लोग सीखते हैं, कारागार जैसे परिस्थिति में हम लोग लॉकडाउन में भी क्यों ना हो, अगर हम भक्ति मार्ग में गंभीरता से हम जुड़ेंगे तो हमारे घर में भी भगवान का अवतरण हो सकता है, जिस तरह देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान का अवतरण हुआ, भगवान ऐसे प्रकट हो सकते हैं। प्रभु जी बोलते हैं वसुदेव गुरु जी हैं, देवकी शिष्य हैं, और भगवान अवतरित हुए क्योंकि देवकी वसुदेव ने कठोर तपस्या की थी बहुत सालों से, 10,000 साल वो सूखे पत्ते खाए थे, जंगल में भगवान की प्रार्थना आराधना की है, अपेक्षा की, भगवान से याचना की, हम पुत्र प्राप्त भाग्य चाहते हैं लेकिन आपको ही हम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर भगवान को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करना हो तो आसान काम नहीं है, उसके लिए भगवान को प्रसन्न करना होता है ना, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे भक्ति से तो आ ही जाएंगे। अनेक लोग इस दुनिया में यत्न करते हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के संबंध में गजेंद्र मोक्ष में एक सुंदर प्रार्थना है, नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि। गजेंद्र बोलता है कि हे भगवान, आप एक सूर्य के समान हो, सूर्य को अगर देखना हो तो हरिकेन लैंप पकड़कर नहीं देख पाएंगे, टॉर्च लाइट लेकर नहीं देख पाएंगे, सूर्य को देखने के लिए रोशनी सूर्य का ही लगता है, सूर्य की रोशनी से सूर्य को हम देखते हैं। इस तरह भगवान को बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से ही हम आपको देख पाएंगे। उसका मतलब क्या है, अगर आप एक जीव की सेवा भावना से प्रेरित हो गए तो आप खुद ही उनको दर्शन दे देंगे आप। इसलिए भगवान श्री ठाकुर बोलते थे कि आप भगवान को देखने के लिए ढूंढो मत, तुम ऐसे सेवा करो कि तुम्हारी सेवा से भगवान को प्रेरणा मिले आपको दर्शन देने के लिए। जैसे कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने हेडमास्टर को देखना चाहता है, वो टीचर को बोलता है हेडमास्टर को मिलना है, वो बोलते हैं नहीं 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 हेडमास्टर बहुत बिजी हैं, डिस्टर्ब मत करो, टीचर्स बोल देते हैं। तो सातवीं आठवीं नौवीं कक्षा में मिल नहीं पाया, अभी दसवीं कक्षा में उसको स्टेट फर्स्ट मिल गया एक विद्यार्थी को, तो तुरंत हेडमास्टर बोलेंगे बुलाओ उस विद्यार्थी को मेरे कमरे में, मुझे मिलना है, हैंडशेक करना है, ऐसे बुलाएंगे कि नहीं। तो इस तरह उन्होंने ऐसे कुछ काम किया स्कूल के लिए जिसके कारण उनको व्यक्तिगत रूप से बुलावा आ गई हेडमास्टर से। इसी तरह देश के लिए भी अगर कोई कुछ बड़ा काम करता हो तो प्रधानमंत्री खुद बुला लेते हैं पार्लियामेंट में, है? उनको कुछ पद्म भूषण अवार्ड, कुछ कुछ बेंट दिया जाता है, मान सम्मान किया जाता है उनको, है कि नहीं है? इस तरह स्कूल हो, कंपनी हो, देश हो, इंसान को रिकग्नाइज करते हैं, अगर उसको पहचान कर सब लोगों को प्रशंसा करते हैं इस व्यक्ति को, है? इस तरह किया इसने ऐसे, तो ऐसा हो तो भक्ति में भी अगर भगवान हमारी भक्ति में गंभीरता देखते हैं, ईमानदारी प्रामाणिकता देखते हैं, हाँ, तो जरूर भगवान प्रेरित होकर हमको एक दिन दर्शन देंगे, ऐसे बोलते थे। उधर वृंदावन में एक राधा दामोदर मंदिर है, उधर प्रभुपाद जब रहते थे सुबह वो देखते थे कि एक बहुत बूढ़ी स्त्री, 80 से भी उम्र उनका ज्यादा होगा, एकदम उनका हड्डी दिखता था, बहुत बड़ी थी, लाठी पकड़ती हुई, रोज वो यमुना में जाकर पानी लेकर आती थी भगवान की अभिषेक के लिए, उनका हाथ पैर गिर जाता था फिर भी लेके आती थी सुबह सुबह 3:30-4 बजे ऐसे आकर पुजारी के कमरे के बाहर रख देती थी, रोज आकर रख कर चली जाती थी। उस समय आसमान में अभी भी सूर्य का उदय होता था, उसकी सेवा को देखने वाले कोई नहीं है, कोई इसको प्रशंसा करने वाले भी कोई नहीं है, उसकी जान पहचान के कोई नहीं है, वो बहुत बूढ़ी स्त्री भक्त थी भगवान के, लेकिन उनको सेवा करने में बहुत आनंद आता था, मेरे गोपाल के लिए, मेरे राधा दामोदर के लिए मैं कुछ लाऊंगे, इस तरह सेवा करती थी रोज आकर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हालांकि किसी ने नहीं देखा, प्रभुपाद जी ने उसको देखा था, प्रभुपाद ने बोला कि भगवान जरूर इसको अपने धाम में ले लेंगे, इसकी सेवा को देख कर, इतनी बूढ़ी अवस्था में हाथ पैर गिड़गिड़ा रहा है फिर भी वो सेवा देने की मन है उनको, वो सेवा भावना से भगवान खुश होकर उसको स्वीकारेंगे ऐसे। तो हम भी लोग अपने अपने घर में, कल अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, हम भगवान के लिए विविध तरह के व्यंजन बनाए, भगवान के लिए विविध तरह की सेवाओं में जुड़े हम घर में ही, और विविध प्रवचनों को अटेंड करें ऑनलाइन में, कीर्तन में भाग ले, हम इस तरह कर कल पूरे दिन को हम दिव्य तरीके से हम बिताएं, ताकि भगवान हमारी भक्ति से भगवान को प्रेरणा मिले और भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं इस दुनिया में कल के दिन रात को अर्धरात्रि में, उसके बारे में आप लोग कथा कल सुनेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब इस तरह भगवान अवतरित होते समय विविध अद्भुत घटनाएं घटती हैं, जैसे ब्राह्मण लोग जो पहले डरते थे कंस से मंत्र को उच्चारण करने के लिए, अभी भगवान के अवतरण होते ही निडर हो गए सब ब्राह्मण, जोर से भगवान के गुणगान करने लगे, सहस्र शीर्षा, ये जो पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं को बोलकर, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वान् अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उदामृतत्वशेषान। ऐसे ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण किया, तालाबों में पानी भर गया, कमल लिली इत्यादि उगने लगे, उधर हंस पंछियां विचरण कर रही थी पानी में, और बाकी सब पंचा मोर नाच रहे थे, और आसमान में चंद्रमा पूर्णिमा हो गई अष्टमी के दिन भी, इस तरह मंद हवा बह रही थी सुगंध को लेकर, और सब दिशा में आनंद ही आनंद फैल रहा था, काल परम शोभनम ऐसे बताया गया है। तो इस तरह वातावरण इस दुनिया में प्रकृति सुंदरी हो जाती है जब भगवान अवतरित होते हैं इस दुनिया में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब परम सत्य भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक खुद ही अवतरित होकर आते हैं इस दुनिया में, तो प्रकृति उनके ही दासी है, उनकी खुशी के लिए सब ऐसे आयोजित करती है ताकि उनका भी आनंद का वर्धन हो, सब सारे जीवों को भी परम आनंद हो भगवान के उपस्थिति में, इस तरह करती है। तो भगवान अवतरित होकर विविध लीला किया है इस दुनिया में, क्यों लीला करते हैं इस दुनिया में आकर भगवान, वो भागवत के अंदर एक सुंदर श्लोक है, अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्तितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। इधर बताया गया कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत, आप भगवान के लीलाओं को सुनकर आप दिव्य बन जाओगे और इस भौतिक दुनिया को पार करके आप भगवद्धाम लौट जाओगे इन लीलाओं को श्रवण करके, ऐसे बताया गया है। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान आते हैं। देहम मानुष्यम आसित, ऐसे व्यवहार करते हैं नन्हे मुन्ने बालक जैसे अपने माता यशोदा के साथ बंधे जाते हैं, एक रस्सी से माँ बांध देती है, अपने गोप मित्रों के साथ खेलते हैं कूदते हैं, विविध तरह की लीलाएं करते हैं वृंदावन में। तो आप देखेंगे दो तरीके की लीलाएं भगवान के, एक है लौकिक दूसरा है अलौकिक। ये लौकिक लीलाएं जो हैं उसको देखकर भक्त लोगों को बहुत भक्ति परवश होता है, परमानंद होता है उनको, जैसे गोचारण लीला करना, माखन की चोरी करना, शरारती करना, इस तरह अपने मित्रों के साथ खेलना कूदना, माँ के गोद में लेटकर दूध पीना, इस तरह बच्चे साधारण बच्चे जैसे, और अपने भक्तों के बीच में अपने आप को स्वामी के रूप में ना घोषणा करना, लेकिन उनमें उनके साथ मिलजुल कर एक ही उसी गांव के एक गोप बाल जैसा रहना है, ये सब लौकिक लीलाएं हैं। इनको देख कर कुछ कुछ लोग सोच लेते हैं अपने मन ही मन, अरे ये तो कृष्ण तो एक ग्वाला था, एक कोई सोचेगा कृष्ण तो कुछ राजा था द्वारका के, कोई बोलेगा कोई पॉलिटिशियन था कृष्ण, ऐसे इस तरह अलग अलग लोग सोचते हैं। इसलिए भगवान क्या किया है, इन लीलाओं के साथ साथ उन्होंने अलौकिक लीला को भी प्रकट किया है, जैसे धावा नल को पी लेना, विश्व रूप दर्शन का प्रकट करना, अपने मुख खोल कर माँ यशोदा को दिखा देना सारे ब्रह्मांड अपने पेट में, ये सब अलौकिक लीलाएं हैं। अंदर दिखाया ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के ग्रहों को दिखाया और बाहर दिखाया विश्व रूप दर्शन। तो कोई इंसान इन चीजों का इन लीलाओं का नकली नहीं कर सकता है। तो भगवान नास्तिकों को ये सिखाना चाहते हैं, अरे मूर्खो मुझे साधारण मनुष्य समझ मत बैठो, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम्। तो मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, मैं परम सत्य हूँ, सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का उद्गम स्थान हूँ, मैं सब जीवों के परम पिता हूँ, मैं गुणातीत हूँ और अंतर्यामी हूँ सब जीवों के हृदय में और सब चीजों का नियंत्रण करता हूँ और मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ। इस तरह भगवान घोषणा करने के लिए अलौकिक लीला को भी करके दिखाते हैं। उसको देखकर बाकी लोग देते हैं वाह ये तो कोई नहीं कर पाएगा, तब समझ पाएंगे हम कि भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, वो परम सत्य है और वो अपने स्वेच्छा से दुनिया में प्रकट होते हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति, जैसे अर्जुन को बोला भगवान ने अजो पिसन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन, अर्जुन मैं अज हूँ तुम भी अज हो, अज का मतलब है जो जन्म नहीं लेता आत्मा, आत्मा भी जन्म नहीं लेता, भगवान भी जन्म नहीं लेते। अव्यय आत्मा का मतलब है आत्मा का भी शरीर सच्चिदानंद रूप होता है, हमारा भी भगवान का भी शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन फर्क क्या है, भूतानाम ईश्वरोपि सन बोलते हैं, सब इस दुनिया के जीवों का मैं स्वामी हूँ, हम नहीं बोल सकते हम स्वामी हैं। अभी हम भारत में रहते हैं, हम एक प्रजा है, 120 करोड़ लोगों में से एक है हम, कोई नहीं बोल सकता कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियाँ हैं साधारण भारतवासी के पास जो शक्तियाँ हैं जो प्रजा के पास तो एक समान नहीं है। इसी तरह भगवान के पास जो शक्तियाँ हैं हम में वो लेश मात्र में भी है, देश मात्र में ही है, लेकिन भगवान अगर विभु बोलेंगे हम अणु हैं। भगवान ने सूर्य को बनाया है, हम मरकरी बल्ब बनाते हैं, भगवान पूर्णिमा चंद्रमा को बनाया है, हम लोग डोम लाइट बनाते हैं, भगवान बड़े अटलांटिक समुद्र पैसिफिक समुद्र इंडियन समुद्र इत्यादि बहुत बड़े बड़े समुद्र को बनाया है, तो हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं अपने हाउसिंग कॉलोनी में। भगवान जो भी करते हैं उसका छोटा करते हैं, उसका हम लोग नकली करते हैं बस। तो भगवान ने बहुत बड़े बड़े ग्रहों को तैराया है, तो हम लोग एक स्पुटनिक को सैटेलाइट को तैराते हैं, कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हैं उसको थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान बहुत बड़े बड़े प्रचुर मात्रा में बहुत चीज़ें किया उन्होंने ऐसे। तो इस तरह की चमत्कार करके इस दुनिया को बनाया भगवान ने। तो आज के सत्र में मुझे एक शीर्षक दिया गया है जिसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन फॉर जन्माष्टमी। हम जन्माष्टमी के लिए हमारे मन की तैयारी हम कैसे करें, इसके संबंध में आज हम कुछ बोलना चाहेंगे। आप देखेंगे जब भगवान अवतरित होते हैं इस दुनिया में, उनका आने का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अनेक लोग जानते हैं, मशहूर श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये श्लोक सब लोग जानते हैं, भारत में मशहूर श्लोक है। साधुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए, उसके बाद धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, ऐसे बताया गया है श्लोक में। और एक श्लोक में बताया गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। अर्जुन, मैं तब तब आता हूँ जब धर्म की ग्लानि होता है, ऐसे बताते हैं। तो किसी को भी पूछिए आप, धर्म ग्लानि का मतलब क्या है? लोग बोलेंगे, अरे कलयुग का जमाना आ गया, अभी दुनिया बिगड़ गया है, सारे दुनिया गटर में जा रहा है, अनेक गलत चीज लोग कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लोग धर्म से ग्लानि के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, धर्म से ग्लानि का मतलब है जब हम लोग आध्यात्मिक भौतिक जीवन में संतुलन नहीं रखते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन को भूल कर भौतिक जीवन में पूर्ण रूपेण घुस जाते हैं, भौतिक प्रलोभनों में, भौतिक जीवन में और आर्थिक विकास करने में और भौतिक सुख सुविधा अर्जित करने में और भौतिक जीवन में ब्यूटी पार्लर में जाना, अच्छे अच्छे अपने आप को सजाना, अपने बाल को सजाना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, अच्छे अच्छे कपड़े इस तरह पहनकर शरीर को, शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना और देहात्म बुद्धि को बढ़ाना, इन चीजों में इंसान पूरा लगा हुआ है, ये धर्म से ग्लानी है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति दुनिया को कोसना आसान है, हम खुद के जीवन में हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या धर्म से ग्लानी हो रहा है। इसका मतलब है हम भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन का संतुलन क्या रखते हैं क्या, ये देखना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि आजकल के इंसान बोलता है कि इसे टाइम नहीं मिलता है, जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, ऐसे लोग बोलते हैं। अनेक लोग बोलते हैं माला करने के लिए समय की जरूरत स्वामी जी है, लेकिन उनको व्हाट्सएप मैसेज के लिए रिप्लाई करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं। जिस तरह हम लोग इन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो संतुलन निकल जाता है उससे, है कि नहीं? तो ये इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भौतिक जीवन को अगर हम बढ़ाते जाते हैं, वो किसके समान है? वो बुखार जब बढ़ता है उसके समान है। देखिए, अगर प्रभुपाद जी कहानी बोलते थे, एक घर में सास ससुर थे और बहू थी, उनका फैमिली डॉक्टर था, कोई आया था उनका बुखार देख चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि बहू का बहुत ज़्यादा बुखार है, 103 हो गया उनका, और सास को बोला उन्होंने 101 बोला उनका। तो सास एकदम नाराज हो गई डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर आपको थोड़ा अकल चाहिए, मेरा वयस क्या है उसका वयस क्या है, मैं सास हूँ वो बहू है, उसको 103 बोला आपने और मुझे 101 बोल रहे हैं, उसका 103 है तो मुझे 105 होना चाहिए, ऐसे बोला है सास ने। डॉक्टर हंस पड़ा, बोला कि अगर 105 होगा आपका, 107 में मर जाओगे आप, ऐसे बोला उसने। तो उसके समझ में नहीं आ रहा था वो बूढ़ी स्त्री को, एक्चुअली ज़्यादा बुखार होने से ज़्यादा तकलीफ है कि नहीं है? इस तरह वो स्पर्धा कर रही थी नंबर से। इस तरह प्रभु जी बोलते हैं कि आजकल इंसान भी स्पर्धा कर रहा है भौतिक वासनाओं को बढ़ाने के लिए, उसको हम नहीं बोल रहे कि उसको खत्म कर दो, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है वो संतुलन है उसमें। प्रभु जी बोलते हैं कि इस दुनिया में भौतिक विकास की, आर्थिक विकास की भी जरूरत है, लेकिन उसको उतना ही करना चाहिए जिससे हम आत्मा और शरीर का एक संतुलन रख सकते हैं हम। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हम अभी ये सुनेंगे, आज समझेंगे कि भगवान ने इस दुनिया में अनेक बार अवतरित होकर आए हैं, अपने धाम लौटे हैं, क्यों आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम लोग सही ढंग से समझेंगे, इससे ये बात पता चल जाएगा। लोगों का ऐसे सोच विचार होता है कि अभी जन्माष्टमी आ रहा है, कल हम कुछ लोग सोचते हैं कि वी विल ऐड लिटिल मोर स्वीट फ्लेवर, लिटिल मोर हैप्पीनेस। लोग सोचते हैं कि ठीक है, कुछ उत्सव आ गया, हम थोड़ा मनाएंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, सम पायस एंटरटेनमेंट, रिलीजियस एंटरटेनमेंट, इस तरह लोग सोचते हैं, कुछ ड्रामा देखेंगे, कुछ गाना गाएंगे, कुछ नाचेंगे हैं, तो कुछ सुनना तो सुनेंगे। तो लोगों को कभी कभी लगता है कि इस तरह के अनेक उत्सव हैं जो हमारे जीवन में रंग चढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। लेकिन गीता में आप पढ़ेंगे, भगवान बार बार एक विषय के ऊपर जोर दे रहे हैं, वो क्यों अवतरित हुए हैं, बोलते हैं भगवान, बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको सही ढंग से जो समझेगा, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको वो खूबसूरत बन जाएगा, उसको और आर्थिक विकास होगा, और वो उसका सब व्याधि मिट जाएगा, ये नहीं बोल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति त्यक्त्वा देहम, इस दुनिया में शरीर छोड़कर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, मामेति सोऽर्जुन, मेरे धाम में आ जाएगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। और एक श्लोक सुनेंगे हम, माम वेत्त पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये दुनिया जिधर हम रहते हैं इसका नाम है दुखालयम अशाश्वतम, दो शब्द बोलते हैं। जिस तरह पुस्तकालय में पुस्तकों का वितरण, पुस्तक मिलते हैं आपको, हिमालय में बर्फ मिलता है, इस तरह ये दुखालय में विविध तरह के दुख हैं, शारीरिक मानसिक दुख है, परजीवों से भी दुख मिलता है, प्रकृति से भी दुख मिलता है, क्षुत पिपास जरा मृत्यु शोक मोह इत्यादि भी इस दुनिया में, काम क्रोध लोग सभी दुख, विविध तरह से दुख होता है। बोलते हैं कि ये दुखालय है, और कोई बोलेगा ठीक है दुख है इस दुनिया में, फिर भी हम सहन करके रहेंगे, नहीं हमेशा के लिए रहने नहीं देंगे, इधर आप देखेंगे कि 80 में 90 में ज्यादा से ज्यादा कितना साल रहेगा इंसान, 100 से नहीं ज्यादा नहीं। तो ये अशाश्वत दुनिया है, बोलते हैं भगवान, मामुपेति तो पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम न आपनुवंती महात्मा न, महात्मा पुरुष लोग इस दुनिया में हमेशा वापस नहीं आते, वो लोग मृत्यु के बाद मेरे धाम में आ जाते हैं और इस दुनिया में वापस नहीं आते। अभी दो श्लोक बोला मैंने आपको, दोनों में भगवान एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में वापस लौटना, भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया। इसलिए हम बोलते हैं आसतो मा सत गामाय तमसो मा ज्योतिर गामाय मृत्योर्मा अमृतम गामाय, बोलते हैं ना, ये मृत्यु रूपी दुनिया को त्याग दो, अमृत रूपी भगवत धाम में लौट चलो, वैकुंठ में, कुंठ टू वैकुंठ, कुंठ का मतलब है ये दुखों से भरा हुआ दुनिया, वैकुंठ का मतलब है उधर कुछ दुख नहीं। तो लेकिन ज्यादातर लोग ये बात के ऊपर जोर नहीं देते हैं, अनेक लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं धार्मिक होते हैं, क्यों धार्मिक अगर होंगे ना हमको अर्थ मिलेगा और उन अर्थ के द्वारा कामोपभोग मिलेगा हमको, और जो भी चाहिए हम भगवान से मांग कर ले सकते हैं और हमारे भौतिक जीवन को और अच्छा रख सकते हैं। अनेक साधु बाबा लोग भी हैं, वो आशीर्वाद भी देंगे हमको, उनसे आशीर्वाद लेने का स्वामी भगवान से विविध पदार्थों को मांग लेने का, और हम खुशी से हम जीवन जाएंगे इस दुनिया में, इस तरह अनेक लोग सोचते हैं। अनेक लोगों का ये सोच होता है कि इस दुनिया को कैसे और अच्छा बनाए, वो नहीं समझते कि ये दुनिया छोड़कर उधर जाने से ही शाश्वत आनंद है, परमानंद है। वो बात अनेक लोग समझते नहीं। मंदिर में आते हैं धार्मिक भी होते हैं, लेकिन उनका सोच विचार इस तरह काम करता है। उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक हाउसिंग कॉलोनी में मैं गया था प्रवचन देने के लिए, पर नया नया प्रवचन, बहुत लोग सब सौ ऐसे सौ 120 लोग आए थे। उनको एक प्रश्न पूछा कि आप बताइए हमारे जीवन में समस्या क्या है। तो यह एक व्यक्ति बोला कि हमारे हाउसिंग कॉलोनी में 24 आवर वाटर सप्लाई मिलता नहीं, सिर्फ 4 घंटा आता है दिन में। अगर हमारे हाउसिंग कॉलोनी में 24 आवर्स वाटर सप्लाई मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, वो बोला। मैं बोला ठीक है, और कोई बताइए जीवन में असली प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोले देखिए क्लब हाउस खाली पड़ा है, उधर कुछ लाइब्रेरी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर सिनेमा मैगजीन सब डालेंगे तो हम लोग शाम के टाइम जाकर पढ़ सकते हैं, वो बोल रहा हो। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, ये समस्या नहीं पूछ रहा हूँ मैं, असली समस्या क्या है बताइए। तो इस तरह को देखा मैंने, वो लोग दैनिक समस्याओं को बता रहे थे, कोई समझ नहीं रहे थे कि जीवन में असली समस्या क्या है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, अर्जुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान बोलते हैं कि देखो तुम धनी हो गरीब हो, तुम गोरा हो तुम काला हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो नीचे कुल में जन्मा हो, इन सब लोगों के लिए ये 4 समस्या है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज भगवान बोलते हैं। तो ये 4 चीजों को सुलझाना चाहिए, इसके लिए हमें भगवत धाम लौट चलना चाहिए। ये भगवान बार बार गीता में इसके ऊपर जोर देते हैं। तो गीता में भी भागवत में भी आप ये पढ़ेंगे आप इसके बारे में। तो ये इसको समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत दूंगा, आप इसके बारे में जरा सोचिए। इधर पुणे में एक जेल है, रबड़ा जेल है। अगर कोई जेल में जेल वास किसी को दिया गया है, वो जेल में रहता है, अगर जेल जेल में रहते समय उसके नाता रिश्ता आते हैं बाहर से, पूछते हैं आपको कैसे लग रहा है जेल में, कुछ समस्या है क्या, वो बोलता है कि ठंडी बजता है, ठीक है, वो लोग ब्लैंकेट देकर जाते हैं और एक हफ्ते के बाद जाते हैं, अभी कुश है ना आप, वो बोलता है कुश हूँ लेकिन बहुत मच्छर काटता है, ठीक है मच्छरदानी दे देते हैं पुलिस वाले लोग दे देते हैं, ठीक है। एक हफ्ते बाद पूछते हैं सब अभी ठीक है क्या, वो बोलता है कि नींद तो हो जाता है लेकिन सुबह वो ठंडी बजता है बहुत, नहाने के लिए ठंडा पानी देते हैं। पुलिस को बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं ठीक है ये गेजर दे देते हैं आपको, हैं गर्म पानी में नहाओ। तो उसके बाद पूछते हैं एक हफ्ते बाद सभी ठीक है का, अभी बोलता है कि अभी राइस दाल देते हैं इधर, अगर पुलाव कड़ी देंगे पुलाव कड़ी रसमलाई पूरन पुड़े देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है वो लोग वो सब देते हैं। तो इंसान खुश हो जाएगा ना। अभी मेरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, जरा सोचिए, ये सब मिल रहा है वो जेल में है, उसको जेल में ही वास करना चाहिए, नहीं तो उसको जेल से बाहर निकलना चाहिए 3-4 महीने के बाद जो भी पीरियड उसको दिया गया है। तो मैं जब पूछा तो अनेक लोग बोले कि प्रभु जेल वासी अच्छा है, सब मिल रहा है, तो पुलाव कड़ी रसमली मिल रहा है, रात को नींद भी अच्छा हो रहा है, गर्म पानी मिल रहा है। अगर मैं होता उसकी स्थिति में बीवी को भी फोन करके बोलता तुम भी कुछ चोरी करके आ जाओ अंदर, सब सुख सुविधा है इधर जेल में, ऐसे बोल रहे थे वो। तो अभी ये उदाहरण मैं क्यों बोला आपको जेल में, इसी तरह इस दुनिया में भी लोग सुख सुविधा को बढ़ाना चाहते हैं। अरे मच्छर काट रहा है क्या, एक मच्छरदानी ले लो, ठंडी बज रहा है क्या, एक ब्लैंकेट ले लो, पानी बहुत ठंडी है क्या, ठीक है गेजर ले लो, ऐसे रख लो, ऐसे साधारण भोजन अच्छा नहीं लगता कि ठीक है अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खाओ। तो इस तरह भौतिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, कम्फर्ट लेवल को इंक्रीज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, उसके द्वारा हम लोग सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह वो आदमी अरवड़ा जेल में है पुणे में, हम लोग भी इस भौतिक दुनिया रूपी जेल के अंदर हैं, इधर इसको भी एक कारागर बताया गया है शास्त्र में। तो क्या हम इस भौतिक दुनिया में सुख सुविधा को बढ़ाकर इधर ही रह सकते हैं क्या, नहीं तो हमें इस दुनिया से उस दुनिया वैकुंठ में जाना है क्या, ये प्रश्न है। तो अभी वो जो जेलवासी जो है उसके लिए 5 समस्या है, मैं आपको बताऊंगा। इन 5 समस्याओं को ही आप अपने जीवन में लागू करके देखिए, ये हम जीवात्माओं के लिए भी है इस दुनिया में, यही 5 समस्या है। पहला समस्या उसका क्या है, जेल खाने के अंदर स्वतंत्रता नहीं है, वो बंधा गया है अंदर 4 दीवारों के अंदर। अभी आप लोगों का अनुभव हो ही गया लॉकडाउन में, सब थोड़ा बाहर विचरण करना चाहते हैं, थोड़ा हवा खाना चाहते हैं, थोड़ा लोगों को मिलने के लिए जाना चाहते हैं, हैंडशेक करना चाहते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करने का है, किसी को छूना भी नहीं, किसी के घर में जाना नहीं, बाहर निकलना नहीं, ऐसे मास्क डालकर रखने का है, जो भी खरीदते हो सैनिटेशन करने का, हाथ धोते रहने का है, तो चार दीवार के अंदर ही रहो, तो हमको कितना बुरा लग रहा है, आप लोग जानते हो है? कुछ लोग उब गए हैं घर के अंदर ही है ना, इस तरह जेल खाने के अंदर ही किसी को रहना हो, फ्रीडम नहीं है उसको बाहर जाने के लिए, उब जाएगा उधर, है कि नहीं है अंदर। इस तरह हम लोग भी इधर भौतिक दुनिया में हैं, इधर ही या अंधेरे दुनिया में हैं हम लोग, जब तक सूर्य नहीं होगा कुछ रोशनी नहीं होगा इधर, ये पहला है। दूसरा है, वो जेल खाने में जो व्यक्ति है वो अपनी बेटा बेटी पत्नी माता पिता नाता रिश्ता इनके साथ मिलजुल कर घर में जो खुशी से रहता था, जेल के अंदर ऐसे नहीं रह सकता वो। इसी तरह हम लोगों के असली नाता रिश्ता भगवान कृष्ण है, जो भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ में है, हम उधर हमारे अनेक मित्र हैं। तो वैकुंठ में भगवान के धाम में बताया गया है कि उधर कोई बोलता नहीं, सब ना सब लोग गाते हैं उधर, कोई चलता फिरता नहीं, सब लोग नाचते हैं उधर, कोई साधारण पानी नहीं पीता, मधु ही पीते हैं उधर पानी के रूप में ऐसे। तो इस तरह के सुंदर धाम हैं, चिंतामणि धाम है, हम उस धाम को छोड़कर इधर आए हैं, तो इसलिए हमारे असली मित्र भगवान हैं, सुहृत हैं, उनसे दूर आ गए हैं, इसलिए हमें इधर छोड़कर उधर जाना चाहिए। इस तरह जेलवासी को भी लगा कि मुझे स्वतंत्रता भी नहीं, अभी घर वालों से मैं दूर हूँ, मैं 3 महीने के बाद सुधार जाऊंगा और ये लोग छोड़ देंगे, मैं घर चले जाऊंगा, उस वो इच्छा होना चाहिए उसमें, है कि नहीं। अभी तीसरा समस्या क्या है, तो ये लोगों ने अभी मच्छरदानी दिया है, पुलाव कड़ी दिया है, ब्लैंकेट दिया है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए देंगे। अभी जेल में जिम्मेदारी पुलिस जो होते हैं वो कभी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं कभी भी। इस तरह इस दुनिया में भी आप देख सकते हैं, कभी बारिश होता है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। जिस स्थान में पानी नहीं चाहिए उधर बहुत बारिश होता है, जिस स्थान में सूखा सूखा पड़ा है पानी चाहिए उधर पानी नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं। ये भौतिक दुनिया है ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि एक समय एक व्यक्ति बड़े धनी होता है, दूसरे समय वही व्यक्ति गरीब से गरीब हो जाता है, ये दुनिया में देखा गया है, ऐसे ऐसे होता है इस दुनिया में। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए पुलिस वाले लोग उसको सुविधा देंगे, कभी भी सुविधा को सुविधा में कटिंग हो सकता है, आज बोलेंगे आज से तुमको ये ब्लैंकेट नहीं मिलेगा, ऐसे बोलने की संभावना भी है उधर। लेकिन अगर आप घर में रहोगे, इधर जेल छोड़कर घर में जाकर पति पत्नी माता पिता सब रहेंगे, तो आपके पास फ्रीडम ज़्यादा है, आप जो भी चाहते हो मिल सकता है, लेकिन जेल के अंदर ऐसे फ्रीडम नहीं है, वो तीसरा है। और चौथा क्या है, आप देखेंगे कि जेल खाना में सज्जन लोग जाते नहीं, सिर्फ दुर्जन लोग जाते हैं। मतलब क्या है, जेल के अंदर भी मारा मारी होता है, काटा काटी होता है, लोग एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, लाफा देते हैं, लात देते हैं, इस तरह के लोगों के बीच में जीना भी मुश्किल है। इसी तरह वैकुंठ में सब शुद्ध जीव हैं, लेकिन वो भगवान को छोड़ बहिर्मुख होकर, भगवान से बहिर्मुख होकर उनको छोड़कर इस दुनिया में जब आते हैं जीव, इस दुनिया में आकर दूषित हो जाते हैं। जैसे अभी पानी निर्मल होता है बादल से निकलने वाली, लेकिन जमीन को स्पर्श करके वो दूषित हो जाता है, मडी मडी वाटर ऐसे हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ऐसे ब्लैक ब्राउन हो जाता है ऐसे। इसी तरह हम लोग इस दुनिया में आकर दूषित हो गए हैं काम क्रोध लोभ इत्यादि वासनाओं से, इसके कारण इतना लोग एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को कॉलर पकड़ते हैं, या इस दुनिया में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं इस दुनिया में। साथ साथ अगर किसी को जानवर का शरीर मिलता हो तो हिरण को तो भाग शेर इत्यादि पकड़कर फाड़कर खाते हैं, अभी एक मेंढक एक तितली को खाता है, नहीं तो मक्खी को खाता है, और मेंढक को एक सर्प खाता है, सर्प को एक चील खाता है, इसको इकोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं ना। ये दुनिया में इतना खतरनाक है, खतरा है, जीवन जिंदा जीने के लिए भी खतरा है इस दुनिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणियों में ऐसा है, मनुष्य में भी आप देखेंगे बड़ा स्पर्धा है। क्या है, एक बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को निगल लेता है, एक बुद्धिमान विद्यार्थी कम बुद्धिमान विद्यार्थी को निगल लेता है, बुद्धिमान विद्यार्थी अच्छा नौकरी को वो ले लेता है, बाकी लोगों को अच्छा नौकरी मिलता नहीं है, है कि नहीं। तो बड़ा स्वस्पर्धा का दुनिया है इधर, इसको बोलते हैं इधर एक जीव दूसरे जीव को निगलता है, जीवो जीव से जीवनम ऐसे बोलते हैं इस दुनिया में है। तो जेल खाने में भी ऐसा ही है, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, मारते हैं, मारा मारी करते हैं ऐसे। लेकिन भगवत धाम में फार्मूला दूसरा है, जियो जीने दो। ब्रह्मा जी ने देखा भगवत धाम में गोलोक में, क्या देखा, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादय मित्राणी बाजिता वास द्रुतरुत्तर्षकादिकम। उन्होंने देखा भगवान के धाम में नैसर्गिक रूप से झगड़ा करने वाले प्राणियां जो होते हैं, जैसे शेर और हिरण, नहीं तो बाघ और हिरण, वो यमुना में साथ में पानी पीते थे। ऐसे एक श्लोक गर्ग संहिता में भी आता है, शार्दूल बालकैर्यत्र क्रीडन्ति मृग बालकाः, ऐसे बताया गया है। शार्दूल बालकैर् का मतलब बाघ का बच्चा, शार्दूल बालकैर्यत्र क्रीडन्ति मृग बालकाः, उधर हिरण का भी बच्चा खेल रहा है। देखिए हिरण का बच्चा बाघ का बच्चा खेल रहा है का मतलब क्या है, उनकी माँ तो कहीं तो निकट ही होंगे ना, बच्चे को कभी अकेले छोड़ते नहीं माता पिता। तो हिरण का माँ भी है इधर, बाघ का भी बच्चा और माँ दोनों साथ में है। तो बाघ और हिरण भी आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उनके बीच में वैरी भावना नहीं है। क्यों, उधर भगवद्धाम में शेर बाघ भी दूध ही पीते हैं, वो दूसरे प्राणी को आक्रमण नहीं करते। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं एक प्राणी दूसरे को आक्रमण करता है, इस तरह जेल के अंदर भी आक्रमण करते हैं एक दूसरे को लोग, इस तरह। अभी कितना हो गया बोला मैंने, चार हो गया, पांच हो गया, हाँ चार हो गया। पांचवा क्या है, जेल के अंदर सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ना होता है, पत्थर तोड़ो पत्थर तोड़ो पत्थर तोड़ो। अगर हम एक घंटा तोड़ेंगे तो कंधे में दर्द होता है, वो लोग आठ घंटा तोड़ते हैं पत्थर, वो दंड है। इसी तरह इस भौतिक दुनिया रूपी कारागार में भी एक बड़ा दंड है, क्या दंड है, सुबह से रात तक नौकरी के लिए जाना होता है। अगर एक पुरुष उसकी पत्नी के साथ अभी विवाह हुआ है, थोड़ा घर में समय बिताने की इच्छा होता है, लेकिन समय किधर है, भागना पड़ेगा ऑफिस के लिए, भागता है। ठीक है, बाद में एक छोटा बच्चा हो गया, नन्ना मुन्ना बालक हो गया घर में, तो अपनी बीबी और बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, वो नहीं सकता, ऑफिस भागना होता है, क्योंकि नहीं तो नौकरी वेतन नहीं मिलेगा, नहीं तो ऑफिस जाकर फोन करता है, बेटा क्या कर रहा है, कुछ है क्या, मुस्कुरा रहा है क्या, सो रहा है क्या, पूछेगा वह, क्योंकि है इच्छा घर में रहने के लिए, लेकिन रह नहीं सकता है, पाबंदी है, ऑफिस जाना होता है। और ऐसा नहीं कि ऑफिस में आपके बॉस के लिए आप मुफ्त में आप सर्विस देते हैं, हम तो वेतन लेते हैं, ऐसा नहीं कि आई हैव फॉलन इन लव विद द बॉस आई एम सर्विंग, हम वेतन के लिए करते हैं। तो बॉस क्या करता है, आपको शोषण करता है, और ज़्यादा काम करवा लो इसे, और हम सोचते हैं बॉस से कैसे बचा जाए। अगर ये कहा एक हफ्ते के लिए बॉस निकल गया बाहर कहीं गया है, तो हम आराम करते हैं, ऑफिस में जाकर सो जाते हैं टेबल में है? ऐसे तो आप देखेंगे इस तरह से भौतिक दुनिया में एक दूसरे का शोषण का दुनिया है इधर, लेकिन कसरत बहुत करते हैं लोग। मुंबई में आप देखेंगे ट्रेन में कितने लोग, हर दो मिनट हर तीन मिनट ट्रेन आता है, फिर भी पूरा भरा पड़ा रहता है ट्रेन, ऐसे ये जीवन का शैली है आजकल के जमाने में। आप देखते हैं इतना कसरत, ये भौतिक दुनिया का एक लक्षण है, इसको पवर्ग बोलते हैं, परिश्रम, प का मतलब प फ ब भ म, प परिश्रम के लिए, परिश्रम करते करते करते, अभी गधा बहुत बोझ उठाता है, परिश्रम करते करते फेन निकलता है उसके मुंह से है? वो फेन बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है, ब बंधन है? और भ भय और म मृत्यु, ये भौतिक दुनिया का लक्षण है। इसके एकदम विरुद्ध वैकुंठ धाम भगवान के धाम को अपवर्ग बोलते हैं उसको है? इसके एकदम अपोजिट है, इधर परिश्रम है उधर अनायास है, भक्त लोग अनायास भक्ति करते हैं भगवान के, उधर इधर फेन है उधर फेन नहीं है, कुछ कसरत नहीं है, उधर सिर्फ भगवान के साथ लीला रचाते हैं, नित्य लीला में भक्त लोग जुड़ते हैं उधर बस। तो इस तरह उधर भगवान के साथ प्रेममय संबंध होता है उधर, इस दुनिया के बंधन जैसे नहीं है, उधर भय नहीं है क्योंकि भगवान साथ में है हमेशा, और उधर मृत्यु कभी नहीं होता है, अमृतत्व है उधर, अमृत का दुनिया है। इस तरह मैंने पांच विषय बोल दिया आपको कारागर के बारे में। इसलिए भौतिक दुनिया रूप ही कारागर से हम चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौटना ही जीवन का परम लक्ष्य है, और भगवान की नित्य निरंतर सेवा में जुड़ना ही जीवन का लक्ष्य है, ये कृष्ण बताते हैं गीता भागवत में। तो अक्सर लोग इस विषय को भूल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में क्या होता है, माया इतना प्रभावशाली है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि वह फंसते जा रहे हैं। इस दुनिया में आप देखेंगे आध्यात्मिक जीवन को लोग उतना प्राधान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि हर एक वयस में हमको अनेक आकर्षक चीजें हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको बलून बड़ा आकर्षक है, खिलौने बहुत आकर्षक हैं, उस आकर्षण में डूबे रहता हो, मोह में रहता है। थोड़ा बड़े होने के बाद टीनेज हो गया तो लड़का लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, वो 10-15 साल निकल जाता है उसमें। उसके बाद विवाह हो गया, अभी जिम्मेदार बनना है, अभी बोलिए आध्यात्मिक जीवन में जुड़ी है, वो बोलेगा नहीं नहीं समय किधर है, अभी ऑफिस जाना है, काम धंधा करना है, पैसा कमाना है, फॉरेन जाना है, अभी जीवन बनाना है, अभी घर बांधना है, उसके भाग दौड़ में है। अगर उसका 40 हो गया, बोलिए अभी 40 हो गया, अभी समय है क्या आपके पास? अरे मेरा बेटा बेटी बड़े हो गए, अभी पूरा बिजनेस मेरे ऊपर है, इसको डेवलप करना है, तो अभी मैं अभी तक 80 लाख बनाया हूँ, लेकिन उसको मुझे 1 करोड़ करना है उसको। अगर किसी के पास 800 करोड़ है तो वो बोलेगा मुझे उसको 1000 बना देने का। इस तरह हर एक व्यक्ति अपने 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 बिजनेस में पैसा बनाने में लगे हैं 50-60 तक। तब बोली अगर आपका 60 हो गया अभी, बेटे बेटियां पड़े होकर विवाह होकर सेटल हो गया, अभी है क्या टाइम, आएंगे क्या? तो वो भी अनेक सोशल ऑब्लिगेशन होता है उनको, इनका बर्थडे है, उनका विवाह है, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, भाग दौड़ में रहते हैं लोग ऐसे। तो अंतिम सांस लेने तक लोगों के पास टाइम नहीं। एक था कलकत्ता में एक बनिया, बिस्तर में लेटे थे, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटा बाकी है तुम्हारा, है ऐसे बोले, तुम शरीर छोड़ दोगे। वो रोने लगा, बोला कि डॉक्टर 4 साल दे देंगे आप तो मैं बिजनेस को सेटल करके बच्चों को देकर उसके बाद निकल सकता हूँ। डॉक्टर बोले अरे 4 साल क्या, 4 घंटे भी तुम जियोगे मरोगे मुझे पता नहीं है, ऐसे बोले वो। तो इंसान अपने आयु को लंबा करना चाहता है, इस दुनिया में ऐशरा में जीना चाहता है, इसलिए वो धार्मिक भी जब होता है वो आर्थिक विकास के लिए और ऐशरा बढ़ाने के लिए इंसान अक्सर उसके बारे में सोचता है ज़्यादा इस दुनिया में। तो ये भागवत से एक सुंदर लीला आपको बताता हूँ। ये दशम स्कंद के 7वें अध्याय, सुंदर एक सुंदर लीला पढ़ेंगे अभी।
करेक्ट,
देखिए नंद भवन में, यशोदा भवन में एक सुंदर लीला होता है। जब कृष्ण का 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद बच्चे जो आइसोलेटेड रहते हैं ना, बच्चे ऐसे बाजू में मुड़ते हैं और जमीन में रेंगने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे जब कृष्ण करने लगे तब यशोदा के सखियों ने बोला यशोदा को, यशोदे देखो तुम्हारा पुत्र अभी जमीन में रेंग रहा है, तो तुमको एक उत्थान सेरेमनी, ये उत्थान की जो उत्सव मनाना चाहिए तुम्हारे बच्चे के लिए, ऐसे बोला उन्होंने। देखिए वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे छोटे छोटे उत्सव आते रहेंगे घर में, जैसे एक स्त्री है गर्भवती होती है तो एक उत्सव होता है, 7वां महीना में भी एक सेमंत उत्सव होता है ऐसे। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है जात कर्म होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत धारण का संस्कार होता है उसका, इस तरह उत्थान भी एक संस्कार है। तो यशोदा ने सोचा कि ओ जरूर हम उत्सव मनाएंगे अभी। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृति में कुछ कुछ उत्सवों में पुरुष लीडिंग लेते हैं, जैसे नंद बाबा, इसको बोलते हैं नंदोत्सव है? नाम ही है उधर जुड़ा हुआ है, नंदोत्सव मतलब उत्सव कौन लीडिंग करते हैं, नंद बाबा करते हैं इसे। लेकिन उत्थान फेस्टिवल जो है ये स्त्रियों का फेस्टिवल है, ये छोटे बच्चे को लेकर, इसमें यशोदा लीडिंग लेती है, है? नंद बाबा और बाकी पुरुष लोग वो पीछे हट जाते हैं और यशोदा मैया को पूछते हैं आपको जो चाहिए बोलिए हम लेकर लेके आकर देंगे आपको, वो असिस्टेंस दे रहे हैं। कभी कभी आधुनिक इंसान सोचता है कि वैदिक संस्कृति में माताओं का आदर नहीं दिया गया, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ कुछ लीडिंग माता जी करती थी, कुछ कुछ लीडिंग पुरुष करते थे ऐसे। तो एक दिन की, उस दिन की बात है जब यशोदा ने सब सखियों को बुलाया था, गोप बड़े बड़े गोप भी आए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आभूषण पहनकर आ गए इस उत्सव के लिए, बैंड बज रहा था, ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, हाँ? और इस तरह यशोदा मैया ने सोचा कि ये छोटा बालक खाना मेरा, इसको इसके ऊपर मुझे ध्यान देते रखना हो तो मैं मेहमान जो अनेक लोग आए हैं, मेहमान आए हैं, उनको कैसे स्वागत करूंगी, उनके साथ समय कैसे बिता पाऊंगी, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर यशोदा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा बैलगाड़ी था, उस बैलगाड़ी के नीचे एक काट था, उधर जाकर खुद भी लेट गई, कृष्ण को भी लेटा दिया और अपने साड़ी से ढक दिया कृष्ण को। कृष्ण को एकदम अच्छा लगा कि माँ भी सो रही है मेरे साथ, इतना आराम लग रहा है, छाया भी है वो का इसका शकट का ऊपर, ऐसे अच्छे वातावरण में कृष्ण सो ही गए। तब माता यशोदा ने देखा अच्छा अभी बालक सो गया तो मैं निकल जाऊंगी रसोई के लिए, बहुत कुछ काम बचा है मुझे, इस तरह सोचकर उठ गई। तो अनेक बाकी गोप बाल थे वो निकट आ रहे थे, माँ ने बोला ऐश कृष्ण को चिमटी मत देना, उसको जगा मत देना, तुम जगाओगे तो मेरा काम नहीं होगा किचन में है। तो बोल नहीं नहीं मैया हम ऐसे ही देखेंगे, उसकी खूबसूरती देखेंगे लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे कृष्ण को, ऐसे बोले। तो वो तुरंत निकल गई, हाँ, और सब गोपियों के साथ हंसती हुई बात कर रही थी यशोदा। नंदा बाबा भी अपने मित्रों के साथ बड़े गोपों के साथ समय बिता रहे थे। तब कृष्ण ने आंख खोल कर देखा अचानक, अरे माँ नहीं है निकट, मेरे साथ सोई थी किधर चली गई, ऐसे उन्होंने सोचा। तब उन्होंने मुड़कर देखा यशोदा अपने ग्रुप में है, क्योंकि जब स्त्रियां घर में आती हैं उनको कुमकुम देना होता है, चंदन देना होता है, उनके लिए साड़ी देती हैं, ब्लाउज पीस देते हैं, कुछ आभूषण देते हैं स्त्रियों को। इस तरह ब्राह्मण लोग आते हैं उनको प्रसाद खिलाना होता है, उनके लिए गाय सोना चांदी इत्यादि दान में देते हैं, उसके साथ साथ बैंड बजाने वाले अनेक लोग आकर वाद्य बजा रहे हैं उनके लिए भी देना पड़ेगा, इस तरह है। और उत्सव चल रहा है, और नंदा बाबा के भी अनेक मित्र आए हैं, उनको उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। इसलिए सब लोग अपने अपने दुनिया में थे। तब भगवान ने सोचा ओहो आप लोग अपने अपने दुनिया में हो क्या, मुझे अकेले छोड़ दिया आप लोग, हैं अभी देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ शरारती करूँगा। तब क्या हो रहा था, वो शकट वो जो का ये था, शकट ही बोलते हैं उसका, हाँ शकट, तो ऐसे नीचे 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 आ रहा था वो, क्यों वो जो पहिए जो थे वो गाड़ी के बैलगाड़ी के दो पहिए, पहिए आधा पहिए अंदर से अंदर चले गए भूमि में, आधा कैसे गए अंदर, क्योंकि ये शकट के अंदर ये बैलगाड़ी के अंदर एक शकटासुर नाम का एक असुर, हवा जैसे असुर है वो, वो घुस गया था, वो कृष्ण को ऐसे क्रश करके मारने के लिए वो बैलगाड़ी को नीचे 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 ला रहा था, ऐसे 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 आकर बहुत निकट आ गया। तब कृष्ण ने अपने पांव को उठाकर ऐसे ही उठाकर स्पर्श मात्र किया, जैसे आप देखेंगे इधर, वो फोटो नहीं है इधर, हाँ एक फोटो में आप देखेंगे कृष्ण पांव उठाकर स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे तो मैं देखता हूँ इधर इधर भी नहीं ना, वही फोटो ना, इधर भी मैंने देखा है कहीं तो देखा है उसका, उनका फोटो पांव उठाते हुए हैं। तो कृष्णा इसे पांव उठाया, उठाकर ऐसे उठाकर स्पर्श मात्र किया, बस क्या हुआ, तत्क्षण तुरंत उसके ऊपर जो भी बड़े बड़े बर्तन थे गाड़ी के ऊपर वो उछल कर गिर पड़े हैं बाजू में, और सब बर्तन इधर उधर बिखर गए, धान ढी ढूम ढाम करके आवाज करते किए लोट पोटने लगे, और जो दो पहिए थे वो भी भूमि से निकल गए, एक पहिया ऐसे गया दूसरा पहिया ऐसे गया, पूरा गाड़ी बैलगाड़ी था वो ही उछल कर गिर पड़ा उधर। इस तरह भगवान ने शकटासुर को मार भी दिया है, लोगों को मालूम नहीं था उस समय। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये चिल्ला तो ये भागते हुए आए सब गोपियां, गोपियां आ गई, गोप आ गए, सबके सब आ गए, कोई भी कहीं और कुछ काम नहीं कर रहे थे, सब अपने काम छोड़ छाड़ कर सब आ गए, कृष्ण को घेर लिया, बच्चा किधर, सुरक्षित है ना बच्चा, उसको उठा लो, यशोदा मैं आ गई, बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लिया, कहना तुमको कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ था, स्क्रैच भी नहीं हुआ था कृष्ण के लिए। तो उन्होंने बच्चों को पूछा क्या हुआ बताओ, बच्चों ने बोला कि खाना ने सिर्फ अपने पांव उठाकर स्पर्श मात्र किया बस, तो पूरा गाड़ी उछल कर गिर पड़ा। तो बाकी लोगों ने बोला अरे बच्चों को क्यों पूछते हो, उनको क्या मालूम होगा, उनको कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि कृष्ण तो परम सत्य भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लीला है ऐसे। लेकिन कृष्ण ने इस तरह की लीला क्यों किया, कृष्ण ये सिखाना चाहते थे कि आप सब लोग अपने दुनिया में हो, गोपियां गोप आप लोग मुझे भूल गए, मुझे एक शकट के नीचे सुलाकर आप लोग चले गए, तो सबके सब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने ये लीला की है, ताकि सब लोगों का ध्यान कृष्ण के ऊपर आ गया। अभी इस तरह हम लोग भी इस दुनिया में, हमारा अनुभव है कि हम लोग अपने कामकाज में पड़ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी कृष्ण को भूल जाते हैं और बाकी चीज़ों में हम लग जाते हैं, तो कभी कभी कृष्ण को याद करते हैं, तो इस तरह कभी कृष्ण हमारे जीवन में भी कुछ चिमटी देंगे, उससे तुरंत हम उनके याद कर सके, क्योंकि इस दुनिया में भी विविध तरह के जो तकलीफें आते हैं हमारे जीवन में, वो तकलीफ इस दुनिया में क्यों रखा गया है। आप लोग देखेंगे इस दुनिया में दो तरीके की चीज़ है, एक चीज़ आपको सुख देता है, दूसरा है आपको दुख देता है। जैसे आप अच्छे अच्छे भोजन खाते हो, अच्छे अच्छे रस पीते हो, आम रस इत्यादि आप पीते हो, तो वो खाते समय पीते समय इस तरह आपकी कोई अच्छी किसी के साथ मैत्री जुड़ गया हो, आपको अच्छा लगता है, सुख प्राप्त होता है, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आ गया आपको, आपको खुश हो जाता है, नौकरी में प्रमोशन मिल गया तो बहुत खुश हो जाते हैं हम। लेकिन इसके विरुद्ध दुख भी आता है इस दुनिया में, देखा गया है ना, इस दुनिया में कोई जान पहचान के बहुत निकट कोई इंसान मर जाते हैं, चले जाते हैं, दुख होता है हमको। इस तरह कोई फेल हो जाते हैं परीक्षा में, किसी को नौकरी छूट जाता है, तो इस दुनिया में जब भगवान से हम लोग सुख लेते हैं, याद रखना चाहिए कि सुख सुविधा दिया है भगवान इधर शाश्वत काल के लिए रहने के लिए नहीं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर हम, खाने के पदार्थ इत्यादि लेकर हम शरीर को हम तंदुरुस्त रखें, लेकिन भगवद्धाम लौट चलने के लिए योजना करें। तो प्रभा जी एक उदाहरण देते हैं, अगर आपके पास कंपनी एक कार देता है आपको, कार क्यों दिया है कंपनी, कार अगर लिया आपने कंपनी से तो उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, उसमें रेडिएटर में पानी डाल सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं, अभी टायर में हवा भर सकते हैं, गाड़ी को गैरेज में रहकर रिपेयर भी कर सकते हैं, सब ठीक है। इसी तरह हमारे शरीर भी एक गाड़ी है, भगवान ने दिया हमको। इधर भी हम पानी डालते हैं, हम भोजन डालते हैं, हवा भी नाक से लेते हैं, हवा भी नहाते भी हैं, है ना। अगर शरीर में कुछ व्याधि हो गए तो गैरेज में लेके जाते हैं, गैरेज क्या है, अस्पताल है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी ये सब करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठ गए आप, तो आपको काम धंधा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, गाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं। पूरा ध्यान किसके ऊपर देना है, बिजनेस, किस क्लाइंट के पास जाना है, कंपनी के किधर क्या कर क्या करना है, गाड़ी को पहले तैयार करने का, तैयार करने के बाद पूरा समय बिजनेस के लिए देने का। इसी तरह शरीर में भी थोड़ा भोजन डालने का, ठीक है खा लिया, थोड़ा नींद चाहिए सो भी लिया, किसी को विवाह करके बच्चे पैदा करना, ठीक है विवाह भी कर लो बच्चे पैदा कर लो, नो प्रॉब्लम। कोई थोड़ा सुविधा की जरूरत है, घर चाहिए, ठीक है घर बांध लो, नो प्रॉब्लम, रहो शांति से। लेकिन ये सब होने के बाद क्या है, पूरा समय दो भगवत धाम लौटने के लिए, जिस काम के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है हमको, ये शरीर रूपी वाहन में बैठकर भगवान के काम करना चाहिए हमको, भगवत धाम लौट चले जाना चाहिए। तो यही भगवान बोलते हैं गीता में भी, भागवत में भी आप देखेंगे इस विषय के ऊपर ही भगवान जोर देते हैं। इसलिए अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इस दुनिया में अभी पैंडेमिक आया है, तो ये एक समस्या आता है, कुछ समय के बाद निकलता है, दूसरा आता है, वो निकलता है, तीसरा आता है, यही दुनिया का बुरा हाल है, क्योंकि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो आप देखेंगे भगवान के भी माता पिता देवकी वसुदेव करके जो महात्मा पुरुष हैं, वो लोग भी इस दुनिया में कम से जैसे क्रूर लोगों के सामने आकर उनसे दुख प्राप्त करते हैं, ऐसे भी लोग आप देखते हैं। जैसे ये कुछ श्लोक याद आ रहा है मुझे, मृगमीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धकादि वर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। ये श्लोक में बताया गया है कि ये जो भौतिक दुनिया इतना खतरनाक दुनिया है, इधर तीन लोग हैं, मासूम लोग हैं, कौन, मृग मीन सज्जन। मृग आप लोग जानते हैं, मृग का मतलब है हिरण, मीन का मतलब है मछली, सज्जन का मतलब है वैष्णव। ये तीन लोग मासूम हैं, भोले भाले हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते। अभी मृग जो है जंगल में, हिरण क्या करता है, वो तो घास खाकर शांति से जीता है वो। मीन भी पानी में तैरता रहता है, किसी को कुछ नहीं करता, वो अपने ही दुनिया में है वो। सज्जन लोग वैष्णव भी किसी को परनिंदा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, शांति से माला लेकर माला घुमाते रहते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, मैं और भगवान की भक्ति है उसमें शांति से रहते हैं, तीनों शांत लोग हैं। फिर भी इन तीनों के लिए भी दुश्मन लोग हैं, तीन लोग कौन कौन, मृगमीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धकादीवर पिशुना। बोलते हैं कि जो मृग के लिए एक शिकारी क्या करता है, एक पेड़ के पीछे छुपकर धनुष बाण लेकर चलाता है वो, हाँ मार देता है हिरण को। क्या किया हिरण ने, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मारता है उसको। मछली को भी एक मछुआरा आकर पकड़ता है, मछली ने उसको क्या बिगाड़ा उसके जीवन में, कुछ नहीं किया, फिर भी उठाता है उसको। इस तरह शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको भी इधर आलोचना करने वाले लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, अपराध करेंगे उनके ऊपर, ऐसे देखा गया इस दुनिया में। तो इसलिए यह दुनिया ऐसी दुनिया है जिधर विविध तरह के समस्या सब जीव सामना करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि आपका मनुष्य जीवन मिला है, ये भौतिक आश्रम को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त करने के लिए। हाँ, इसलिए इस अध्याय में आप देखेंगे परीक्षित महाराज कि किस तरह का आश्रय प्राप्त कर रहा है, आप देखेंगे। देखिए इस अध्याय के शुरुआत में परीक्षित बोलता है, येन येन अवतारेण भगवान हरिदेश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे सुखदेव जी, आपकी कृष्ण कथा सुनकर इतने मेरे मन में आनंद परम आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहले अपने मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह इत्यादि के बारे में अवतार के बारे में बोला आपने, अभी वामन अवतार इतने बड़े हो गए हैं, नरसिंह अवतार भी बहुत बड़े होकर आए ऐसे हैं, लेकिन अभी जो बता रहे हैं लीलाएं कृष्ण की बाल्य लीलाएं हैं तो ये बहुत आनंददायक है। क्यों? इधर कृष्ण अपने आकार को बड़ा नहीं करते, अपने मधुर सुंदर रूप को स्वरूप को ऐसे ही रखते हैं, साथ साथ कृष्ण के हाथ में एक भी आयुध नहीं। अपने ओंटों का शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने पूतना को वध किया, अपने पांव का शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने शकटासुर को ऐसे एक लात दिया उसको मारा है, और अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने तृणावर्त के गर्दन पकड़ कर उनको नीचे लाया, अपने पेट की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड घाट में अपने मुख खोलकर पेट में सारे ब्रह्मांड को दिखाया भगवान ने ऐसे। तो इस तरह अपने अलग अलग अवयवों में बड़े शक्ति प्रकट की है भगवान ने, आकार बदले बिना आयुध इस्तेमाल किए बिना, कि किसी को केशी को मारना हो तो अंदर हाथ घुसा देते हैं, घुसाकर मार देते हैं उसको ऐसे। इस तरह की लीला क्या है, ये तो बहुत मधुर है कृष्ण की लीला है। इसको सुनकर मैंने मन में मैं मोदन का अनुभव करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यही लीला बताते जाइए मुझे। ऐसे बोलकर भागवत कथा का श्रवण जो है उससे हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला में आश्रय प्राप्त होता है, ये बात परीक्षित बताते हैं। उधर बताते हैं, यतशृण्वतो अपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्तचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैवहारं वदमन्यसे चेत्। पांच लाभ बोलता है कृष्ण कथा सुनने का। पहला बोलता है कि यतशृण्वतो अपैति अरति, हमारे अंदर जो अरति का मतलब कभी कभी कथा सुनते सुनते लोग सो जाते हैं शुरुआत में, लेकिन अगर सुनते जाएंगे वो नींद उड़ जाएगा, उसके बाद रुचि आ जाएगा उसको सुनने में। यही बता रहे हैं कि अपैति अरति क्यों, उसका क्या कारण है। जैसे हम शुरुआत में हम अहंकारी होते हैं, जिसके कारण हम अपनी गुणगान सुनना चाहते हैं। अगर कोई कृष्ण का गुणगान सुनाता है तो उसे नींद आ जाता है हमको, अरे किसी का और सुनना नहीं, हमारा खुद का सुनना है, इस तरह सोचकर जीव सो जाता है। लेकिन सुन कर चित्त जब शुद्ध होता है तब कृष्ण की गुणों को सुनने में परम आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह आप देखेंगे नए नए बच्चे, छोटा बच्चा जो है उसको भोजन खिलाने के लिए प्रयत्न करो, वो भाग जाएगा, एक कमरे से दूसरा कमरा जाएगा वो। लेकिन बड़े होने के बाद वही बच्चा, जैसे हम लोग अभी प्लेट लेकर खुद ही आ जाते हैं जब भूख लगता है, माँ हमारे पीछे नहीं पड़ती है। इस तरह भक्ति मार्ग में भी शुरुआत में थोड़ा स्टार्टिंग ट्रबल होता है, धीरे धीरे इंसान पक्के हो जाता है कथा सुन कर, रुचि जग जाता है। यतशृण्वतो अपैति अरति वितृष्णा, वितृष्णा का मतलब काम क्रोध लोभ से उत्पन्न होने वाली आकांक्षाएं, प्यास काम के लिए प्यास, लोभ के लिए प्यास, ये सब प्यास मिट जाता है अब हमारे हृदय से। वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति, हमारे मन शुद्ध हो जाता है, मन से मन की मलिनता मिट जाता है। भक्तिर हरव, भगवान हरि के लिए भक्ति जग जाता है, प्रेमा भक्ति, भगवान हरि के बारे में और सुनने की मन करता है, और सेवा देने की मन करता है। मंदिर में हम भागते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सेवा देते हैं, उसमें आनंद लूटते हैं। और तत्पुरुषे तो सक्यम, भगवान हरि के भक्तों के साथ मैत्री जुड़ जाता है। ये पांच लाभ उन्होंने बोला हमें प्राप्त होता है कृष्ण कथा सुनने से। तो अगर हम लोग कृष्ण कथा को श्रवण करके उसको दूसरों को दोहराते हैं और अपने जीवन में भी लागू करते हैं तो हमें भगवान का जो आश्रय का अनुभव हम कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज, आप लोग जानते हो जंगल में एक बार विचरण करते समय बहुत भूख और प्यास के कारण एक आश्रम में गए, एक समीक ऋषि के आश्रम में। वो मुनि उधर समीक ऋषि बैठकर ध्यान मुद्रा में थे, परीक्षित को बहुत प्यास था, सोचा कि उसने, अरे मुनि ने मुझे स्वागत भी नहीं किया, बिठाकर पानी भी नहीं दिया, दो अच्छे मीठे शब्द भी नहीं बोले, किस लेने का आदमी है ये, लगता है कि नाटक कर रहा है। उन्होंने एक मृत सर्प को उनके गले में लगा दिया। लेकिन बाद में वापस लौट जाते समय उनको अफसोस हुआ कि मेरे हाथ से कुछ गलती हो गया हूँ। इस तरह परीक्षित ने बहुत पछताया। अगर इसके कारण मुझे मेरे ऊपर कुछ श्राप हो तो हो सके, श्राप हो सकता है लेकिन मेरे परिवार वालों के ऊपर कुछ ना हो, इस तरह परीक्षित ने भगवान को प्रार्थना की। तो उनको 7 दिन में शरीर छोड़ने का पाबंदी हुआ, उनको 7 दिन में छोड़ना था शरीर। तो गंगा के तट में पहुंच गए, अनेक ऋषि मुनियों को मिला, सुखदेव को समय जागे, उनकी शरण लिया। तब उन्होंने बोला, तमोपजातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी दत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट स्कुह कस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णु गाथा। हे मुनिवर, मुझे कुछ भी डर नहीं है अभी, अगर 7वां दिन में तक्षक नाम का सर्प आकर मुझे डसेगा, शरीर छोड़ने के लिए मुझे डर नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा के तट में बैठा हूँ, कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, सब ऋषि मुनियों के संग में बैठा हूँ, और मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है और मेरा मति भगवान कृष्ण में एकाग्रत हो रहा है, मुझे क्या चिंता है मुझे, ऐसे बोले वो। तो उस समय उन्होंने सुखदेव जी को बोला, आप कथा को संक्षिप्त मत कीजिए, विस्तृत रूप से बताइए। आप ये मत सोचिए कि 7 दिन मैंने सोया नहीं, खाया नहीं, कुछ पानी पिया नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रहा है, क्योंकि कृष्ण कथामृतम पी रहा हूँ, मैं कृष्ण कथा का अमृत पी रहा हूँ, तृप्त हूँ, तुष्ट हूँ इसमें, ऐसे बोले परीक्षित महाराज। वही परीक्षित पहले पानी के प्यास में उन्होंने एक मृत सर्प को डाला था मुनि के गले में, लेकिन अभी उसको प्यास ही नहीं हुआ कृष्ण कथा सुनने के बाद। इससे क्या पता चलता है, कृष्ण कथा में असली आश्रय है। तो हम लोग इस तरह की कृष्ण कथा सुनकर हमारे अंदर एक तेजोमय, एक गंभीरता आना चाहिए भक्ति में, एक आतुरता आनी चाहिए कि भगवान कृष्ण को मैं कब प्राप्त करूँगा, भगवान कृष्ण के लिए मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, ऐसे सदा कृष्ण का चिंतन मन में होना चाहिए। नहीं तो जैसे अभी हमने शकटासुर के बारे में पढ़ा, इधर देखिए इधर बताया गया है शकटासुर के बारे में, तो शकटासुर किसको संबोधित करता है, आलसीपन को संबोधित करता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मंडे को मैं ये मंदिर में जाता हूँ, फ्राइडे को उस मंदिर में जाता हूँ, रविवार को यह मंदिर में जाता हूँ, जाते हैं, रीति रिवाज वगैरह करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर करते हैं, वो औपचारिक तरीके से, वो लोग चित्त को शुद्ध करने के लिए नहीं करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर आसक्ति नहीं बढ़ाना, लेकिन ऐसे ही ऊपर ही ऊपर रीति रिवाज करना है, इससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है इससे। तो हमें उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए, धर्म का उद्देश्य क्या है, भगवान के लिए रति जगाना हमारे हृदय में। अगर भगवान के लिए आकर्षण नहीं जगा हमारे हृदय में, उसका मतलब है हमें धर्म को अपनाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए भागवत हम जब पढ़ते हैं, भागवत का वही उद्देश्य है, तो मैं एक उदाहरण दिया था आपको इनका शकटासुर का। इस तरह हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर हम आलसी पड़ेंगे, कभी भी माया हमको पकड़ लेगी, माया के पकड़ में आ जाएंगे हम, क्योंकि खास करके कलयुग में माया बहुत प्रबल है। तो शास्त्र से हम पढ़ते हैं, जो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा सस्ता लिया तो असावधानी से जिया, तो उनको तुरंत ऐसे घटना, उनके परिस्थिति कड़ी हो जाती है उनके जीवन में। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज, थोड़ा असावधानी से एक मृत सर्प को डाल दिया गले में, तो उनको 7 दिन में शरीर त्यागना पड़ा, भागवत सुनकर गंभीर बन गए। उसके बाद चित्रकेतु थे, आप देखेंगे आसमान में विद्याधर लोक में राजा बनने के बाद उड़ते उड़ते उन्होंने शिवजी पार्वती को देखा, वो शिवजी क्लास दे रहे थे वैराग्य के ऊपर सिद्धों को, तो हंस पड़े, बोले कि आप अपने धर्मपत्नी पार्वती माता को गोद में रखते हुए क्लास दे रहे हो वैराग्य टापी के ऊपर, तो आपको देखकर कुछ बद्धजीव भी नकली करेंगे। इस तरह उन्होंने कुछ उनको कोसा। शिवजी ने कुछ अपराध नहीं लिया, लेकिन पार्वती माता ने अपराध ले लिया, उसके कारण उनको श्राप मिला एक असुर वृत्रासुर बनने के लिए, इनको चित्रकेतु को। ऐसे इधर भरत महाराज सब छोड़ छाड़ कर जंगल में गए, उधर जाकर एक हिरण से आसक्त हो गए, और अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। फिर भी एक बात हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्त को इस तरह का कुछ भक्ति मार्ग में एक्सीडेंट होता है, उनको हिरण बनना पड़ा, फिर भी वो अगले जन्म में हिरण के शरीर में भी उनकी भक्ति में कुछ कमी नहीं था, बहुत गंभीर बने और भी अति तीव्र बने। समझ गए कि मेरे मूर्खता के कारण मैं हिरण बना भी, लेकिन उस जन्म में संत महात्माओं की संग किया, सूखा घास खाया, अपने जन्म स्थान को छोड़कर पलाहाश्रम में गया, वो सब किया, सदा वो पश्चाताप करते रहा। अगले जन्म में जड़ भरत का शरीर मिलकर भगवत धाम लौट गया वो। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भागवत भी हमको सिखाता है कि अजामिल एकदम उसका जीवन स्लो स्मूथ सेलिंग था, बहुत बढ़िया चल रहा था, ब्राह्मण था वो, लेकिन अचानक उसको जंगल में ऐसे एक दुर्घटना, एक अशुभ दृश्य देखने को मिला, अश्लील स्त्री पुरुष का व्यवहार देखा उसने, उसके कारण उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया और उस वेश्या को घर में लाकर, वो दूषित स्त्री को घर में लेके आकर भोग किया और अपने पतिव्रता नारी पत्नी को बेच दिया उन्होंने। तो इस तरह हम पढ़ते हैं भागवत में, ये अगर हम इफ़ यू आर नेग्लेक्टफुल, इस दुनिया में कुछ भी आप नेग्लेक्ट करते हो, जैसे अगर कोई घर वालों को नेग्लेक्ट करता है तो बाद में झगड़ा होता है, अगर आप आपके नौकर चाकरों को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो लोग छोड़कर चले जाएंगे, ऐसे भी होता है। अगर आपके ऊपर बॉस है उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो नौकरी छूट जाएगा, हमारा साथ नौकरी नहीं रहेगा हमारे पास, इस तरह है। कुछ व्याधि है शरीर में, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, सही टाइम पर दवाई नहीं लेते हैं तो बाद में व्याधि बढ़ जाता है, खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी कैंसर बहुत तो ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इंसान मर ही जाता है ना, ऐसे है। इसी तरह हम साधना को नेग्लेक्ट करेंगे आध्यात्मिक जीवन में तो अनेक समस्याएं उठते हैं। हम सुबह उठकर साधना नहीं करते हैं, प्रभुपाद की किताब ठीक तरह से नहीं पढ़ते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट करने से क्या होता है, बुरी आदतें आ जाते हैं, ज़्यादा खर्चा पैसा होता है, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, माला छूट ही जाता है, माला नहीं कर पाता है इंसान, चार विधियों को जो पालन करते हैं, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, उनको भी इंसान तोड़ना चालू कर देता है तो बिगड़ जाता है इंसान। इसलिए हम आध्यात्म जीवन में जीवन को सस्ता न ले, अति परिचय अवज्ञात। तो ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम ये सोच सकते हैं कि ये भगवान, मैं आध्यात्मिक जीवन अभ्यास कर रहा हूँ भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन चित्त को शुद्ध करके आपके नित्य लीला में जुड़ने के लिए, इस तरह है। तो हम लोग जब तक जरूरत की महसूस नहीं करते हैं, जैसे अगर आपको प्यास होता है तब तो पानी अच्छा लगता है, भूख होता है तब तो भोजन आपको अच्छा लगता है कि नहीं, इसी तरह भगवान की शरण जाने की एक आतुरता हमारे में नहीं हो तो हम शरण लेंगे ही नहीं, हम आध्यात्मिक जीवन को एक औपचारिक तरीके से हम करेंगे तो ज़रूरत कैसे हम महसूस कर सकते हैं हमारे हृदय में, तो वो श्रवण और कीर्तन से और वैष्णव सेवा से होता है वो। अगर हम श्रवण और कीर्तन सही ढंग से करते रहेंगे, सही चीज़ समझ में आएगा कि अरे ये माया बहुत खतरनाक है, माँ में भगवान बताते हैं दैवी है शाह गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया बहुत खतरनाक है, उसको पार करना, लेकिन माँ में ये भी ये प्रपद्यंते मायाम एताम तरंति थे, मेरे शरण में जो आएंगे भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं खुद ही उनको उद्धार कर दूंगा। तो इस तरह हम समझेंगे कि इस दुनिया में क्या क्या खतरे हैं जीव के लिए, वो समझकर हम ऊपर उठेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु 500 साल के पहले उधर अवतरित हुए नवद्वीप में, वो बहुत सरल तरीके से धर्म के धर्म को कैसे पालन करना उन्होंने सिखाया। मृदंग दीजिए। वो सुबह सब भक्तों को साथ में लेकर वो खुद ही जाते थे और वो भक्तों के साथ नाचते थे और गाते थे, और सब लोग अपने प्रभात फेरी को देखकर अपने अपने घर से ऊपर से वो बाहर आकर देखने के लिए आते थे लोग, क्या कीर्तन चल रहा है, पति पत्नी बच्चे दादा दादी सब लोग आते थे, वो गाते थे
ओ दिलो अरुण पूरब बागे जामणि गोराया मानी जागे बकत समोह दुया साते केला नागर ब्राजे ताताई ताताई भजल पोत मना गना गन जांजेर रो त्रिमेडला डला सोना रंग चरणे नो पुरवाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले ना बोलो रे बदन बोली मितने चावशे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे।
देखिए क्या गाते हैं, क्या गाते हैं महाप्रभु। उदिल अरुण पूरब बागे, वो सुबह सुबह उठकर प्रातः काल में प्रभात फेरी निकालते थे अपने भक्तों के साथ, गली गली में जाते थे, पांव में नूपुर पहनकर नाचते थे, अपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे गाते हुए, ऐसे प्रेमे डाला डाला सोना रंग ऐसे अपने शरीर को हिलाते हुए नाचते थे। सब लोग उस सुंदर भव्य दिव्य दृश्य को देखने के लिए आते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। लेकिन कृष्ण खुद ही एक सन्यासी का वेश धारण करके, निमाय पंडित पहले थे उसके बाद सन्यासी का वेश धारण किया, वो खुद ही नाच कर गा कर भक्तों को भक्ति मार्ग को सिखा कर सरल मार्ग को उन्होंने सिखा दिया। तो उन्होंने बोला लोगों को, वो ताताई करके बजा देते हैं, ये उनके लोग मृदंग बजा देते हैं और करताल भी बजाते थे, कैसे ऐसे करताल बजाते थे, बजाते हुए गाते थे, क्या बोलते थे लोगों को बोलते थे, मुकुंद माधव यादव हरि बोले ना बोलो रे, ये सब लोग अपने मुंह से भगवान का नाम निकालो, मुकुंद माधव यादव हरि। तो लोग थोड़ा संकोच करते थे, मुकुंद माधव बोलते थे, महाप्रभु बोलते थे वदन बोरी, मुख भर के बोलो मुकुंद माधव यादव हरि। इस तरह उन्होंने बोला कि नाम जोर से लो, प्रेम से लो, हृदय से लो, निरपराध भावना से लो, ऐसे सिखाया उन्होंने। और मिचे निदावशे गेलोरे रात, अरे रात को हम इस दुनिया में सब लोग सो जाते हैं और दिन में शरीर को सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। उन्होंने बोला कि इस तरह के समय की बर्बादी है, ये नहीं करना चाहिए। ये मन दुर्लभ मानव देहो पाया की करो भवन के हो, देवे ना बजिले यशोदा सुत चर में पूरी बेला जे उदित तापन होइले अस्त दिना गला बोले होइले व्यस्त तबे के नाये वे आलस हो ना बज हृदय राजे। बोलते हैं इधर बोल रहे हैं कि ये मन दुर्लभ मानव देहो, देखो मनुष्यों ये मनुष्य जीवन आपको जो मिला है बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आपके पास जिह्वा है, मनुष्य का जिह्वा जिससे आप नाम ले सकते हो भगवान के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कोई कुत्ता बिल्ली नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप ले सकते हैं, मनुष्य जिह्वा है आपके पास, इसलिए नाम लो। ये मन दुर्लभ मानव देखो पाया की करो भावना के हो, नाम ले लेकर चित्त को शुद्ध करके कृष्ण के लिए भाव को जगाओ। ये भी ना बजले यशोदा सुत, अगर कृष्ण की इस तरह जन्माष्टमी नहीं मनाओगे, आप उनके नाम नहीं लोगे, उनके से संबंध नहीं जोड़ोगे, जीवन के अंतिम काल में तुम पछताओगे, ऐसे बताते हैं। और बोलते हैं कि उदित तपन होइले अस्त, बोलते हैं कि सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है, शाम के समय सूर्य का अस्तमन होता है, तो ये एक दिन तुम्हारे जीवन से कट गया, जैसे कैलेंडर होता है ना, उसमें एक एक पेज फाड़ो, 31 दिसंबर को सब फट जाता है, कुछ भी नहीं रहता। इस तरह हमारे जीवन में भी सूर्य के उदय से अस्तमन से एक दिन कट गया है, धीरे धीरे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, दांत गिर जाएगा, बाल गिर जाएगा, शरीर पक जाएगा, बूढ़े हो जाएंगे, शरीर त्याग देंगे, लेकिन उसके पहले भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करना है। सर्व बोल रहे कि उदय तपन हो ले व्यवस्था देने के लिए बोले हो व्यवस्था, तब के ना आलस हो, क्यों तुम आलस होकर भक्ति में ढीले पड़ रहे हो, गंभीर बनो बोलते हैं।
कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ बकते विराग प्राण, नाम बिना किचु नहीं तो आरो 14 भुवन माजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नेताय गौरंग जया, नेताय गौरंग, नेताय गौरंग जया, नेताय गौरंग जया, नेताय गौरंग।
इस तरह नेताय गौरंग उन्होंने तीन ही चीज सिखाया हमको, है बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा आराधना करो और कृष्ण की शिक्षा गीता भागवत पढ़ो, बस ये सारांश है। करोगे तो मनुष्य जीवन में आप सार्थकता को प्राप्त करोगे। इस तरह गौर नेताय दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे नाच नाच कर उन्होंने सिखा, यही मार्ग है। हाथ ऊपर करके अपने शरणागति प्रकट करो कृष्ण को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। अगर पुलिस आकर चोर को बोलता है सर, बोलता है तुरंत हैंड्स अप करता है ना वो, है इस तरह है। उसका मतलब क्या है, शरणागति है वो। इस तरह द्रौपदी को भी जब समस्या हुई, कोई बचा नहीं पाए उसको, हाथ ऊपर कर दिया उन्होंने, शरण ले। तो हम लोग भी हाथ ऊपर करने से भगवान को बोलते हैं, मैं किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखा हूँ भगवान, आपको ही, आप ही हमारे एकमात्र सहारा है, आप ही आश्रय है, आपकी चरणों में हम आश्रित हैं, आपका नाम लेंगे, आपकी पूजा आराधना करेंगे, आपकी गीता भागवत पढ़ेंगे, सरल जीवन जिएंगे, दिन रात आपकी भक्ति में लगे रहेंगे, भक्तिमय सेवा में। इस तरह कलयुग में इतना ही करना है आपको, सुबह उठिए नाम लेते लेते, रात को सोइए नाम लेते लेते, दिन में 16 माला ले लीजिए, गीता भागवत पढ़िए, पूजा कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए, कृष्ण कृष्ण को ही केंद्र बिंदु बनाकर जीवन बिताइए, और किसी गलत कार्य में फंसिए मत, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, इत्यादि को वर्जित कार्यों को नहीं करना, और प्रभुपाद जी की किताब सरल किताबों को पढ़ते जाना। तो ये जन्माष्टमी में हम ये शपथ ले सकते हैं कि हे भगवान, आप आए हैं इस दुनिया में, इस दुनिया को सुखमय बनाने के लिए नहीं, या हमें हमारे जीवन को और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए नहीं, भौतिक प्राप्ति को देने के लिए नहीं, लेकिन हमको हमारे हृदय में आपके लिए आकर्षण जगाने के लिए आए हैं, आपकी लीला चेष्टाओं के द्वारा, ताकि हम आपसे आकर्षित होकर इस दुनिया से ऊपर उठकर भगवत धाम हम लौट चले, आपकी नित्य लीला में आकर हम भाग ले, आपके साथ ही नित्यानंतर काल के लिए रहे, इसके लिए आप आते हैं इस दुनिया में। इस मिशन को हम कभी ना भूले। तो श्री प्रभुपाद जी इस मिशन को ही सिखाने के लिए अमेरिका गए, देखिए सारे दुनिया में कैसे फैला दिया उन्होंने, 1000 से भी ज्यादा मंदिरों में आज और कल जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। ये प्रभुपाद का बहुत बड़े योगदान है सारे दुनिया के लोगों के लिए। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की।